हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय नौ श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठां यमुहुर्कुयोगिनां नीरस्तसाम्यां दिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आवीरशुम्भा यवनाथसादरा येनी च पापा यदपाशयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता। भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशु दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ राय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 9, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर देना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए किस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी किस तरह से प्रकट हुए उसके विषय में बताया कि भगवान की नाभि से कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने जब बहुत ढूंढने के उपरांत भी अपने स्रोत को नहीं जाना तब उन्हें कुछ दो शब्द सुनाई दिए तप। तो वो देवताओं के 1000 वर्षों तक भगवान के इस आदेश का पालन करते हुए तपस्या करने लगे और ब्रह्मा जी की इस तपस्या से, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को मन को वश में किया था और वो केवल जीव आत्माओं का कल्याण, वो चाहते थे कि मुझे पता चले कि मुझे भगवान ने किस लिए बनाया है, तो उसके लिए वो बहुत ही शुद्ध हृदय से तपस्या कर रहे थे। तो भगवान की तपस्या से ब्रह्मा जी की तपस्या भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्हें अपने वैकुंठ धाम के दर्शन कराए। और वो वैकुंठ धाम कितना सुंदर था, जहाँ पर कोई भी अवगुण नहीं, कोई भौतिक गुण नहीं थे, वहां पर काल का प्रभाव नहीं था, बहिरंग शक्ति यानी माया का कोई प्रभाव नहीं था। और उसके बाद वैकुंठ लोक के अंदर किस तरह के प्राणी थे कि सारे लोग जो थे वो भगवान के जैसे ही दिख रहे थे, चार भुजाओं वाले थे, श्याम वर्ण थे, पीतांबर धारण किए हुए थे और बहुत ही सुंदर श्रृंगार आभूषण पहने हुए थे और उनका सुंदर मुख था कमल पुष्प के समान, उनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी और वैकुंठ में बहुत ही सुंदर 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 लक्ष्मी की जो सहचरियां हैं वो थी और बहुत सारी स्त्रियां बहुत ही सुंदर लग रही थी, मुखमंडल उनका बहुत सुंदर था, विमानों पर बैठी हुई थी और बहुत ही सुंदर। वैकुंठ जगत के विषय में बताने के बाद बाद देखा कि ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, वो भगवान जो श्रेयपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम, जो समस्त यज्ञों के लक्ष्मी के और सारे भक्त समुदाय के पति हैं, उनके दर्शन किए और भगवान बहुत ही सुंदर थे। मतलब भगवान को देखकर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए, उनका मुस्कुराता हुआ मन को मोहने वाला जो मुख है उसको देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, मुकुट धारण किया हुआ था और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बहुत सी शक्तियों से घिरे हुए थे। और जब उन्होंने ब्रह्मा को देखा तो भगवान को पूर्ण रूप से बहुत ही ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी को देखने के बाद भगवान को देखने के बाद बहुत आनंद प्राप्त हुआ और इतना आनंद कि उनके नेत्रों से प्रेम में अश्रु बहने लगे और भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। और भगवान ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, उनसे जैसे हम आपस में हाथ मिलाते ना, भगवान मंद मंद हंसते हुए ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और उसके बाद ब्रह्मा को बोला, क्या बोला, बोला कि वेद सृष्टि की ये जो इच्छा से जो तुमने अभी तपस्या की है उस दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं उसके उपरांत भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैं ऐसी तपस्या से संसार की रचना करता हूँ, इसका पालन करता हूँ और इसको अंत में लीन कर देता हूँ। अतः तपस्या ही मेरी वास्तविक शक्ति है। उसके बाद भगवान ने जब इतना कह लिया तो उसके बाद ब्रह्मा जी कुछ बोलने लगे और भगवान से कुछ पूछने लगे। और क्या पूछते हैं आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 25 से। ब्रह्मा वाच भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्म उवाच अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सर्वभूतानां, भगवान हे भगवान सर्वभूतानां अर्थात समस्त भूतों के या समस्त जीवों के, जीव आत्माओं के अध्यक्ष अवस्थित गुहां। अध्यक्ष मतलब आप नियंता हैं, अवस्थित मतलब स्थित, गुहां मतलब हृदय के भीतर रहते हैं। वेद ही अप्रतिरुद्धेन, वेद मतलब जानो ही, निश्चय ही अप्रतिरुद्धेन मतलब बिना बाधा के, प्रज्ञानेन अंतः ज्ञान द्वारा, चिकीर्षितम यानी प्रयास करता है। अनुवाद, ब्रह्मा ने कहा हे भगवान आप प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। यानी कि ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान के प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि आपको कुछ पूछने की क्या जरूरत है, आप तो सब जीवों के हृदय में बैठे हो, सबको सबके नियंत्रित हो, तो आप तो सब कुछ जानते हो। अपने अंतः ज्ञान यानी आपका जो वास्तविक ज्ञान है उसके द्वारा समस्त प्रयासों से जो जीव जो कर रहा है उस सबके हर प्रयास को भगवान जानते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्षुण भविष्यणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। तो भगवान सर्वज्ञ हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं जो शायद भगवान को पता नहीं होगा, तभी तो अपराध करता ना जी। अगर उसको ये लग रहा होता कि भगवान देख रहा है और भगवान ये मेरे अपराध को नोट कर रहा है, भगवान को याद रहेगा कि मैंने ये अपराध किया है, उसकी बदली में मुझे पनिशमेंट मिलेगी, भगवान सामने वो हर कुछ देख रहा था। भगवान सर्वज्ञ है। यदि जीव को इतना भी ज्ञान हो जाए ना कि भगवान सर्वज्ञ है तो जीव सुधर जाए। लेकिन ये हृदय के अंदर कुछ ऐसी वासना है ना कि उसको लगता है कि शायद ये जो मैं गलत कर रहा हूँ वो नहीं देख रहे होंगे, है ना, ये जो मैं जो गलत सो, अरे देखना तो दूर की बात है, वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो तो आपकी गलत सोच को भी देखता है, है ना। वो हमारे सारे प्रयासों से, चाहे वो मन से हो, चाहे वो हमारी इंद्रियों से हो, चाहे हमारी बुद्धि से हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान उसे देखते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं। 13.23 में शायद भगवान ऐसे बोलते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्षा महेश्वरम, कि परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में साक्षी बनकर बैठा हूँ, फलस्वरूप वे परम नियंता हैं, नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरण अर्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निर्देशक को आवेदन पत्र भेजता है और निर्देशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीव आत्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीव आत्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदया होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीव आत्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बन जाता है और उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। तह दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एग्जांपल्स दे रहे हैं कि अगर कोई शराब पीना चाहता है तो उसको परमिट की जरूरत होती है, तो वो परमिट जो देने वाला है वो अपराधी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो जब तक उसको परमिशन देता नहीं है तब तक उसको शराब नहीं मिलेगी, तो उसको तो परमिशन देनी है। लेकिन शराब पीने के बाद जो नुकसान होता है, जो हानि होती है, जो अपराध लगता है, वो परमिट देने वाले को नहीं लगेगा, वो तो शराब पीने वाले को लगेगा। तो उसी तरह से शराब पीने से उसका कोई लाभ भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो उसका दास बन जाएगा और उसकी वो बुराई कभी छूटेगी नहीं। तो बुद्धिमान तो वो है जो उसे उस गलत कार्य के लिए परमिशन ले ही नहीं, है ना। तो हम सबको भगवान ने दो रास्ते दिखाए हैं, हमारे पूरे जीवन में दो रास्ते हैं, एक सत्य का और दूसरा अपराध का। चाहेंगे किसी भी रास्ते पर, उसके लिए परमिशन भगवान की लेनी पड़ेगी, अनुमंताच अनुमति भगवान लेने वाले हैं, लेकिन डिसीजन हमारा है ना। आप अगर अपराध के रास्ते पर जाना चाहते हो तो भी ये आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, भगवान बहुत दयालु है, वो आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप अपराध के रास्ते पर चलना चाहते हो या फिर पुण्य धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो। और उसके साथ साथ भगवान ने ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे, लेकिन जीव इतना मूर्ख है कि फिर भी वो अधर्म के रास्ते पर चलता है, फिर भी वो शास्त्र की अवहेलना करता है, तभी उसे दुख भोगना पड़ता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह संभव है, इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि यह असंभव है। हाँ, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते कि जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा है तो बस इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, इच्छाओं का दमन चाहते हैं, लेकिन इच्छा रहित होना संभव ही नहीं है, ये असंभव है, इच्छाओं का लोप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छा कौन कर सकता है, जो जीवित है, यानी कि जीवन का लक्षण ही ये है कि उससे इच्छा हो रही है। अब वो इच्छा कौन सी करता है वो उसका ही अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इच्छाओं के बिना जीव आत्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीव आत्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसीलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तदात्मय का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना, इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जीव इच्छा के बगैर नहीं रहता, जीवन और इच्छाएं साथ साथ रहती हैं, लेकिन यदि जीव इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है तो वो इच्छाएं उसका विनाश कर देती हैं। इसे मनुष्य को निज इंद्रिय की को आनंद देने की इच्छा करने के बदले में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी चाहिए, और यदि वो ऐसा करता है तो ही वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदनुरूप फल भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान को बताने की भी जरूरत नहीं होती। हमारे मन में भी इच्छा होगी ना तो भगवान उसको भी देख लेंगे। आज हम जहाँ जहाँ पर हैं, जो जो हमें प्राप्त है ना, उसकी डेफिनेटली हमने कभी इच्छा की है, डेफिनेटली, क्योंकि प्राप्त वही होगा जिसको आप चाहते हो। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, माम इच्छा तुम धनंजय, कि भले तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, भले तुम अभी तक उस लायक नहीं बने हो, लेकिन एक काम तो तुम कर सकते हो, और वो है मेरी इच्छा करना। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो करे कम अज कम, कि भले ही मेरे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, खाली इच्छा देखेंगे ना तो सर्कमटेंसेस हमारे अनुरूप बना देंगे। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी इस तीव्र इच्छा को देखेंगे ना तो भगवान स्वयं हमारे हृदय को इतना पवित्र कर देंगे कि उसमें भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे। हमारी तरफ से कमी है, भगवान की तरफ से कमी नहीं है, इसलिए हृदय में बैठे हुए भगवान को ये विश्वास दिलाओ कि हम उनसे प्रेम करते हैं और हमें उन्हें प्राप्त करना है, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी क्या होगा, वही जो वो चाहेगा, है ना, होता तो वही है ना जो हमारे कर्मों के अनुसार। तो भी अच्छा है हम भगवान को ये कहने के बदले में कि आप वो करो जो मुझे अच्छा लगता है, ये बोले कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। और जब हमारे हृदय से ये आवाज निकलेगी कि कृष्ण जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो, तभी हमारा कल्याण होगा, क्यों हमें भूत और भविष्य के विषय में नहीं पता, भगवान तो जानते हैं कि किस में हमारा कल्याण है। तो हर तरफ से फायदा हमारा ही है अगर हम भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं, तो उस सब में लाभ हमारा ही है, आनंद हमें ही मिलेगा। बुद्धिमानी यही है कि निज इंद्रियों को संतुष्ट करने के बदले में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तथापि नाथन मानस्य नाथनाथाय नाथितम् परावरे यथारूपे जानीयाम् ते स्वरूपिणी तथापि नाथ मानस्य नाथनाथाय नाथितम् परावरे यथारूपे जानीयाम् ते स्वरूपिणी तथापि नाथ मानस्य तथापि यानि फिर भी नाथ मानस्य अर्थात याचक का नाथ हे भगवान नाथया प्रदान करो, कि भले ही आप समस्त जीवों के हृदय में बैठे हो और सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरी एक छोटी सी इच्छा है, और आप तो समस्त इच्छाओं को नाथितम यानी कि समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हो आप, इसलिए हे नाथ परावरे संसार तथा दिव्य विषयों में यथा जिस प्रकार रूप में जानियम जान सकूं ते तुम्हारा तू यानी लेकिन अरूपणी यानी निराकार, फिर भी मेरी एक इच्छा है। भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सब जानते हो, फिर भी आप तो समस्त जीवों के नाथ हो, इसे मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, परावरे यथा रूपे ये जो आपका स्वरूप है वो कैसे आप धारण करते हो, जानियंते त्वरूपणी के यद्यपि आपका ऐसा आपका कोई भौतिक रूप तो नहीं है, फिर आप ऐसा रूप कैसे धारण करते हो? अनुवाद देखिए, तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार से धारण करते हैं, यदि भी आपका ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। आगे ब्रह्मा जी पूछते हैं, यथात्मा माया योगेन नाना शक्त्युपमृतं विलुम्पन् विसृजन् गृहणम् बिभ्रदात्मानमात्मना तथात्मा माया योगेन नाना शक्त्युपमृतं विलुम्पन् विसृजन् गृहणम् बिभ्रदात्मानमात्मना तथा आत्ममनस्य मायया तथा आत्ममाया योगेन यानि संयोग से नाना शक्तियों, नाना मतलब बहुत विविध प्रकार की शक्ति से, उपगृहितम यानी संचय द्वारा, विलुम्पन यानी संहार के लिए, विसृजन अर्थात सृष्टि के लिए, ग्रहण अर्थात स्वीकृति के लिए, विवृत यानी पालन के लिए, आत्मानम यानी अपने आप को, आत्मनाम यानी अपने द्वारा। एक तो पहले मुझे ये बताइए कि आप ऐसा स्वरूप कैसे धारण करते हो, और मुझे ये बताइए कि आप ये सारी लीला कैसे किस प्रकार करते हो। पहले ना सृजन करना, फिर पालन करना, और फिर उसके बाद सबका विनाश करना। तो आप अपने से किस प्रकार से ये भिन्न संयोग के द्वारा, मतलब आप तो शाश्वत हो, आप तो इटर्नल हो, आपका तो कभी ना जन्म होता है ना ही आपका कभी नाश होता है। तो ये तो सब आपके जैसा नहीं है ना, ये तो अलग है इसकी प्रकृति माया की। तो आप ऐसा कैसे करते हो? अनुवाद, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान ही है। यानी जो कुछ भी दिख रहा है भगवान का ही संश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य लोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान के तदाकार, भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विविध संयोग के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती है, और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि कर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक है। यह किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में आपको दिख रहा है ना, वो भगवान की ही शक्तियाँ, चाहे वो अंतरंग शक्तियों बहिरंगा हो या तटस्थ शक्तियों। जिस तरह से सूर्य होता है ना, तो सूर्य का प्रकाश उसका ही तेज है, उसी का ही अंश है ना। लेकिन जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से अभिन्न होकर भी भिन्न है, भले ही वो सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य का ही प्रकाश है, उसके कारण उसका अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो सूर्य तो नहीं है ना। उसी प्रकार माया संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान के ही कारण है, लेकिन भगवान नहीं है ना, अभिन्न होकर भी भिन्न है। तो यहाँ उसकी व्याख्या श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आगे बताएंगे। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णित तथा तद्विषयां देहे मनीषां मयि माधव। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णते यथा तद् विषयां देहि मनीषां मयि माधवां। क्रीडस्य, क्रीडस्य अर्थात जिस प्रकार खिलवाड़ करते हो, अमोघ अचूक संकल्प निश्चय, ओर्णनाभि यानी मकड़ी, यथा जिस प्रकार ओर्णते ढक लेती है, तथा उसी प्रकार तत् विषयाम उनके विषय में देही मुझे बताइए, मनीषाम अर्थात दार्शनिक विधि से मई माधवा, मई माना मुझको, माधव माना समस्त शक्तियों के स्वामी। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, माधव मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की संकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतिकप हैं। अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विधिताओं का एक ही परम स्तोत्र है। उसका इसका यही उदाहरण, सही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और सब जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकृत्य के सृजन पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसे कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं के में नित्य लगे रहते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा अपने संपूर्ण शक्ति अवतार या फिर तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, कारण कार्य शक्ति के अंश उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा भगवान की सृष्टि पालन और संहार का कार्य होता है। आगे ब्रह्मा जी पूछते हैं, भगवन् भगवत् शिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बद्येयं यद् अनुग्रहात्। भगवत् शिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बद्येयं यद् अनुग्रहात्। भगवत् अर्थात भगवान द्वारा, शिक्षितम अहम शिक्षा प्राप्त अहम यानी मैं, कारवाणी अर्थात कार्य के द्वारा, ही माना निश्चय ही, अतंद्रिता कारण स्वरूप, न एहमान न मना कभी नहीं, एहमान मतलब यद्यपि कार्य करते हुए, प्रजा सर्गम जीव आत्माओं की उत्पत्ति, बद्येयम यानी भद हों, यत अनुग्रहात, यत माना जिससे, अनुग्रहात मतलब कृपा से। ब्रह्मा जी कहते हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीव आत्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि आप किस तरह से संसार का सृजन पालन और संहार करते हो, तो उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो आप मुझे भी ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा मैं भी कार्य करूं और जीव आत्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करूं, बस मेरे आपकी आज्ञा के अनुसार उनमें कोई आसक्ति। हम देखते हैं ब्रह्मा जी देखो सबका सृजन करते हैं, पूरे संसार का सृजन, और बार बार प्रलय होता है। ये भगवान हम लोग कैसे, एक बच्चा अगर हम पैदा करते हैं उसमें हमारी कितनी आसक्ति होती है। वो बच्चा अगर कभी पलंग से भी गिर जाता है तो ऐसा लगता है उसको नहीं लगा, हमारा हृदय टूटता है ना। तो हमारी जो सृष्टि है, मतलब जो भी हमारा है, जिसको हमारा तो कुछ नहीं है लेकिन जिस जिस वस्तु को हम हमारा सोचते हैं उसके प्रति हमारा कितना आकर्षण है, कितनी आसक्ति है। हमारी गाड़ी को कभी लग जाए तो हमको कितना दुख होता है, हमारे शरीर को कोई चोट हो जाए, या इवन हम कोई ड्रेस बनाते हैं वो ड्रेस यदि खराब हो जाती है तो भी हमको दुख होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरी आसक्ति नहीं हो उसमें। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी नहीं चाहते हैं कि अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपदान में वह निमित्त मात्र होता है। ये बहुत ही पावरफुल शब्द है श्रील प्रभुपाद जी कि हर एक व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपदान में वह निमित्त मात्र है। सब कुछ करने वाले भगवान है, बस उन्होंने हमें निमित्त बनाया है। तो इसलिए हर एक वस्तु के अंदर, हर एक कार्य के अंदर, हर एक काम के अंदर, हर एक चेष्टा के अंदर हमें भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। बद्धजीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीव आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भव बंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीव आत्मा पर सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन रहता है, किंतु अबद्ध यानी मुक्त अवस्था में जीव आत्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि के कार्य करता है। कितना सुंदर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि या तो जीव माया के गुणमयी माया के अंडर में काम करेगा या भगवान की इच्छा के अनुसार, लेकिन स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, जबकि माया के हाथों की कठपुतली बने रहना तो भव बंधन है। तो उस बद्ध अवस्था में जीव आत्मा भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध अवस्था में जीव आत्मा को सीधे भगवान के ज्ञान प्राप्त होते। तो बद्ध अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? भगवान के कार्यकलापों का चिंतन करना चाहिए, और ऐसे भगवान के कार्यकलापों का चिंतन करते करते, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का श्रवण करते करते एक समय ऐसा आएगा कि बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में आएंगे और सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होगा। ये भगवान के शब्द हैं कि जब आप मेरा कंटिन्यूस भजन करोगे तो क्या होगा? बिना भगवान, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि के कार्य करता है, और कहाँ लिखा है? 10.10.11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में रक्त है बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होता है। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरोह हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते, तेषां सतदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो कंटिन्यूस मेरे नाम का भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और तेषां एवानुकं पार्थम अहम अज्ञान जनतमा, उन पर मैं बहुत अधिक कृपा करता हूँ और उनके हृदय में बैठे हुए अज्ञान को समाप्त कर देता हूँ, ज्ञान के प्रज्वलित दीपक को प्रज्वलित कर देता हूँ। इसका अर्थ है कि हमारा जो मोह है भौतिक जगत के अंदर, जो हमारा आकर्षण है, जो हमारे बद्ध यानी कि भवबंधन का कारण बन रहा है, उससे दूर होने का, इससे मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है कि हम कंटिन्यूस भगवान के विषय में श्रवण करते रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि कृष्ण कृपया हमें इस भौतिक आसक्ति से छुड़ाकर अपने चरणों की ओर आकर्षित कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।